आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
भारत में लड़कियों की ट्रैफिकिंग या जिसको मानव तस्करी कहते हैं, इसके केसेस आज भी कहीं ना कहीं से रिपोर्ट होते रहते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में दार्जिलिंग में एक टी गार्डन में रहने वाली रंगू सौरिया एक ऐसी जिंदा दिल महिला हैं जिन्होंने लगभग 10,000 लड़कियों को ट्रैफिकिंग के चंगुल से बचाया है। ये एक ऐसा काम जिसमें पता नहीं ये लड़कियां कहां जाती, रेड लाइट एरिया या फिर एक नरक भरी जिंदगी, या शायद फिर जिंदगी भी ना बचती। रंगू सौरिया ऐसी ही लड़कियों महिलाओं के लिए काम करती हैं। इसके लिए आधी रात हो या फिर घने जंगल में जाना हो, जान का खतरा हो, लेकिन रंगू सौरिया ने हमेशा आगे बढ़कर स्वयं इन लड़कियों को बचाया है, भले इसके लिए इनको अपनी जान को खतरे में ही डालना ना पड़ा हो। रंगू सौरिया ने इन लड़कियों को एक नया जीवन दिया है, एक भविष्य दिया है और अंधकार से उनको उजाले की तरफ ले गई हैं। वे बताती हैं।
नमस्कार, मेरा नाम रंगू सौरिया है और मैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का मिरिक सब डिवीज़न का एक छोटा सा टी गार्डन से बिलोंग करती हूँ। मेरा प्राइमरी स्कूलिंग अपना गांव में ही हुआ और हायर सेकेंडरी मैंने बिजनबारी से किया और ग्रेजुएट मैंने दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज से किया। मैं एक छोटा सा टी गार्डन जहाँ मेरा मम्मी पापा मेरा टोटल फैमिली वहीं रहती है, तो वहीं से ये सारे चीज़ें सीखने को भी मिली। क्योंकि जैसे लड़कियों को तस्करी किया जाता है और उनको बचाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगी कि जब मैंने सोशल वर्क में मेरा पैर आगे किया तो उस टाइम पर तक मुझे उतना फाइनली ट्रैफिकिंग इतना जोड़ तोड़ से होती है मुझे पता नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे जब मैं छोटी थी स्कूल पढ़ती थी उस टाइम पे मैंने ये बहुत सारे ऐसा घटनाएं देखी कि महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होती थी, तो मुझे लगता था कि इनके लिए क्यों ना हम लोग सपोर्ट करें। इसी वजह से फिर मैं आस्ते आस्ते करके काम करती गई, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम करती गई। तो अभी करीबन मेरा 20 इयर्स हो गया मैं इसी फील्ड में, रेस्क्यू करना, किसी भी तरह से फंसे हो उन लोगों को बचाना मैं अपना कर्तव्य और ड्यूटी समझती हूँ।
लड़कियों को ट्रैफिकिंग से बचाना कोई साधारण कार्य नहीं है। कैसे करती हैं वो ये काम एक महिला होने के नाते, प्रशासन का क्या सहयोग रहता है, वे विस्तार से बताती हैं।
जी, तस्करों का सामना तो करना ही पड़ती है और ये जोखिम से पूरा भरा पड़ा है। लेकिन जैसे हम लोग ने ठान ही लिया काम करना है तो इस जोखिम को भी बिना देखे मैंने इसको नज़रअंदाज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिस बच्ची मिसिंग हो जाती है या कोई लड़की ट्रैफिक हो जाती है, कोई भी ऐसा कुछ भी घटना हो जाती है तो उनका पेरेंट्स बहुत घबराए होते हैं। घर का मैंने कंडीशन ठीक नहीं होगा उस टाइम पे मेंटली। सो हमें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से जैसे करके भी इस लड़की को, इस बच्ची को बचाना ही है। जैसे आप जानते हो मैंने कोई भी बीमार पेशेंट हॉस्पिटल में लेके जाए या कोई डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट करना शुरू किया है तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर किसी भी हालत में उस पेशेंट को बचाना चाहते हैं। सो ऐसे ही मेरा भी एक्टिविटी है, कोई भी केस मेरे पास आ जाती है तो मुझे जैसे करके भी निकलना ही पड़ेगा, ये मेरा सोच रहता है। ऑब्वियसली प्रशासन से मदद मिलती है, अदरवाइज काम करने में बहुत सारा बाधाएं आती है। जैसे कोई रेड लाइट एरिया में जाना हो तो मैं या मेरा टीम अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कि उस एरिया में कैसे लोग रहते हैं, कैसे गुंडे लोग रहते हैं। उनका मैंने हर एंगल में देखा जाए तो उनका एक इन्फर्मर रहता है। तो इसीलिए हम लोग को जब भी रेड के लिए जाते हैं तो विदाउट पुलिस हम लोग नहीं कर सकते। और अभी तक मुझे बहुत सारा मैंने हर स्टेट से पुलिस ने मुझे कोऑपरेट किया है, जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हुई हूँ इस रेस्क्यू में। अब तक करीबन 10,000 बच्चे, महिलाएं, लड़कियां को बचाया है।
कभी कभी रंगू जी को इस कार्य में बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, धर्म संकट कह लीजिए। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी माता जी की तबीयत बहुत खराब थी। वो उनसे मिलकर गईं, लेकिन जब वापस आईं तब तक माँ अस्पताल में चली गई थीं, फिर कभी वापस नहीं आने के लिए। ऐसे समय पर भी रंगू जी ने अपने कर्तव्य से नहीं समझौता किया।
2008 में एक छोटी माइनर बच्ची थी जिसको रेस्क्यू करना था। उस टाइम पे करीबन उस टाइम पे क्या होता था कि मैं कभी पुणे, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी बिहार, कभी हरियाणा, इस साइड में इतना महीने में शायद हार्डली मैं 1 या 2 दिन में घर में रह पाती थी। तो महीने महीने भर मुझे बाहर रहना पड़ता था। 15 डेज आफ्टर मैं रेस्क्यू से आई, फिर दूसरा केस लेके मैं वापस चली जाती थी। तो घर का जो फैमिली मेंबर है उन लोग के साथ भी मेरा टाइम अच्छी तरह से मैं नहीं बिता पाती थी, क्योंकि हर एक फेस्टिवल में, जो भी इंडियन फेस्टिवल होता है, हर फेस्टिवल में मैं कभी भी घर पे नहीं होती थी। कभी ट्रेन में, कभी बस में, कहीं 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 मैंने दूसरे स्टेट में, अदर स्टेट में, ये सारे चीजें होती थी। तो मैंने उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत वही फोन में मैंने इंफॉर्मेशन लेना कि घर में क्या है क्या नहीं, ये सारे चीजें मैं बाहर से ही वो करती थी। तो एक बार मैं जैसे एक केस आया था, एक बच्ची थी जो मुझे उसको रेस्क्यू करना था, और वो स्पेशली आउट ऑफ स्टेट था, हमारे स्टेट से वो अलग स्टेट में मुझे मूव करना था। लेकिन मैं उस टाइम पे बहुत टेंशन में पड़ गई, क्योंकि मेरा मम्मी जब मैं वापस आई तो देखा उनका हेल्थ बहुत डाउन हो चुका था। और उस टाइम पे थोड़ा बहुत मैंने सिचुएशन भी ऐसा नहीं था कि तुरंत वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस कंडीशन में अभी मैं बाहर जाऊं या क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और स्पेशली एक ये चीज है कि जो मेरा अपना घर है वहां से करीबन मुझे सिलीगुड़ी आने के लिए 33 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो लेकिन अपने पास तो कोई व्हीकल नहीं है, सो मुझे ट्रांजिट करते 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 आना पड़ता है, या तो मैं यहाँ आके काम करके ट्रांजिट करते करते मुझे घर पहुंचना होता है, जबकि फॉरेस्ट एरिया है, बहुत साइड से रास्ता है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे एलिफेंट, लायन वगैरह निकलती। इतना रिक्स लेके मैं वापस आना जाना ये सारे काम करती थी। तो जब मैं घर में पहुंची तो और मुझे निकलना था बाहर, मैंने जैसे पहुंची तो मम्मी को बोला कि मुझे फिर भी वापस जाना पड़ेगा एक बच्ची के लिए। तो उस दिन मैं वहाँ घर में रुकी थी। तो मम्मी ऐसे तो हेल्थ में उनको प्रॉब्लम आया था, तो नेक्स्ट डे मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाऊं या मैं रेस्क्यू में जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरा समझ नहीं आ रहा था और मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो उसी टाइम मेरा मम्मी ने बोला कि मुझे फाइनली फीवर है, कुछ नहीं होगा, तुम चली जाओ। मेरा क्या है, मेरा तो आधा जिंदगी चला गया। अब उस छोटी बच्ची जिसका माँ रो रही होगी, उसका फैमिली परेशान होगा, तो उस बच्ची को अगर रेस्क्यू हो गई तो सबसे खुशी की बात होगी। तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि मेरे से भी जरूरत उस बच्चे के लिए है, तो तुम चली जाओ। तो जैसे मैं चली भी गई और वहाँ जब रेस्क्यू करके आई तो उस टाइम पे मेरा मम्मी हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी और बहुत सीरियस कंडीशन में था। इतना सीरियस कंडीशन में था कि दोबारा उनको नहीं बचा पाए। तो इस चीज़ की मुझे बहुत दुख होती है कभी कभार। काश मैं उस टाइम पे थोड़ा रेस्क्यू को रोकती तो शायद आज मम्मी मेरे पास होती। तो कभी फिर सोचती हूँ कि शायद मेरा मेरा जो ड्यूटी है, जो मैं काम कर रही हूँ, उसको मुझे ईमानदारी पूर्वक अभी तक तो किया है, लेकिन उस टाइम पे भी शायद यही मेरा फर्स्ट काम था बोल के मैंने उसी को काम किया।
फिर भी रंगू जी ये सब किसी अवार्ड या पुरस्कार के लिए नहीं करती हैं, फिर भी इनको सैकड़ों की संख्या में पुरस्कार प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं।
अवार्ड में आपका जो 100 वुमेन्स अचीवर 2017 में मिला था, इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू से, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन्स डिपार्टमेंट के थ्रू से। और बंगाल रत्न 2021 में मिला था, और गॉडफ्रे ब्रेवरी अवार्ड 2009 में मिला था। उसके बाद फिक्की एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू से यंग वुमेन अचीवर अवार्ड मिला, बाया कर्बे पुरस्कार 2023 में मिला था, अपराजिता अवार्ड है और ब्रेवरी अवार्ड दो दो तीन मिला जो नेशनल लेवल से, और बहुत सारा चैनल से भी मिला है, मैं मुझे इतना सारा याद नहीं है। और जैसे सम्मान प्रशस्ति पत्र तो बहुत सारा है, 50 से भी ज़्यादा सोसाइटी क्लब ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है।
सच है, एक ऐसी महिला जिसने 10,000 लड़कियों को अंधेरे कुएं में जाने से बचाया, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान की परवाह न करनी पड़ी हो, समाज में सम्मानित करने योग्य है। लखनऊ से फैसल फरीद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।